ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णववांश्च श्रीरूपमं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरु सिंधुभ्यैवश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे वंशी विभूषित करा नवनीरगाभात् पीतांबर दारुण बिभ कफन धरो पूर्णेन्दु सुंदर मुखान अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम् न जाने किरात हूणा गृभुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवनाखसादय येन्ये च पापा यत्पाश्रयाश्रया शुद्यन्ति तस्मे प्रभविष्णवे नमः प्रचोदिताजे न पुरा सरस्वती वितन्वताज ससतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणाप्रा दुर्भूत्किलास्यत समे ऋषीणा ऋषभ प्रसीदता भुरुतेर्महकवी यैमा पुरो विभू निर्माय शेते यदमूष पुरुष भुङ्क्तेर्गुणानशो दशषोडशात्मक सोलङ्क श्रेष्ठ भगवान् वचांसि मे
हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का सौथी पहला बधाना चरणों में क्षमा याचना। परेश प्रभुए मने रविवारे फोन कर्यो, प्रभु तमारे अमारा गुरुवारना प्रवचन में आवानु छे। प्रभुजी ने मैं कीधु कि हूँ आवी तो जाओ, परंतु मारी एक शर्त छे। मने गुजराती में प्रवचन आपता नथी आवडतु। प्रभुजी कीधु कोई वांधो नहीं, हिंदी में प्रवचन आपजो। तमारा चरणों में प्रार्थना, गुजराती अभ्यास न होवाने कारणे आजे हूँ तमने हिंदी में भागवत प्रवचन श्रवण करावीश। समझवानो प्रयास करजो। हृदय में जो भाव होय तो भाषा प्रकट थता वार न लागे। भावनी साथे, प्रेम अने श्रद्धानी साथे આજે આપણે ભાગવત કથાનો રસાસ્વાદન કરશું। તો આપ સબ ભક્તો કા આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંઘ કી ઓર સે પ્રસ્થાપિત પ્રતિ ગુરુવારીય ઇસ ભગવદ ગીતા સત્ર મે હાર્દિક સ્વાગત કરતે હૈ। યહાં પર પ્રતિ ગુરુવાર કો श्रीमान मूर्तिमान प्रभु द्वारा भगवत गीता पर आधारित प्रवचन होता है। भगवत गीता का अर्थ है भगवान का गीत। कुरुक्षेत्र की भूमि में खड़े रहकर भगवान ने 45 मिनट का जो गीत गाया है, वह गीत आज के जीवों के लिए परम कल्याणमयी है। भगवत गीता का यदि कोई श्रवण करता है, शास्त्र में कहा गया है कि संसार सागर घोई, यह संसार की तुलना सागर के साथ की गई है। समुद्र, संसार को समुद्र कहा गया है। समुद्र में जैसे केवल पानी ही होता है, वैसे इस भौतिक जगत में केवल दुख ही होता है। संसार दावा नल लीढ़ है लोक, संसार दावा नल की अग्नि में, दुख की अग्नि में जल रहा है। संसार में सब लोग दुखी हो रहे हैं, तो कहा गया है संसार सागर गोई, संसार दुखों का सागर है। परंतु यदि कोई मनुष्य तत् इच्छामि यो नरः, यदि कोई इस दुख रूपी संसार के सागर को पार करना चाहे तो कर सकता है। कैसे? कहते गीता नाव समा रहिय पारम गोतु सुखे नच। यदि संसार में रहने वाला मनुष्य भगवत गीता रूपी नाव में सवार हो जाए तो बहुत आसानी से इस संसार को पार कर सकता है। भगवत गीता यह दुख रूपी संसार को पार करने के लिए नाव के समान है। भगवत गीता में भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दिए हैं, परंतु भक्तों भगवत गीता का अंत होता है सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। हे अर्जुन, सभी प्रकार के धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण ग्रहण करो। भगवत गीता में भगवान ने सब कुछ छोड़कर उनके शरण में जाने को कहा है, और जहां पर भगवत गीता का अंत होता है वहां पर श्रीमद् भागवतम प्रारंभ होता है। भगवत गीता में भगवान ने कह दिया सब कुछ छोड़ो, परंतु भगवान को कैसे पकड़ा जाए यह यदि जानना हो तो श्रीमद् भागवत की कथा सुननी चाहिए। किस प्रकार से भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भगवान में प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं, यह भागवत हमें सिखाता है। यदि कोई श्रीमद् भागवत की कथा सुनता है, केवल कथा सुनने से वह भगवान की प्राप्ति कर सकता है। और भगवान के शक्यावेश अवतार व्यास देव जी भागवत लिखने के प्रारंभ में ही कह दिए कि भगवान का दर्शन करने के लिए भागवत सुनने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि कोई अपने घर पर बैठकर केवल विचार करे कि आज मैं गुरुवार के प्रवचन में जाकर भागवत कथा सुनूंगा, केवल घर पे बैठकर विचार करे मैं भागवत सुनूंगा, सुना नहीं है, इच्छा करने मात्र से सद्य ही अवरुद्य तेत्र कृति भी सुश्रुषु भी तत्क्षणात्, उसी क्षण उसी वक्त इच्छा करने मात्र से भगवान उस व्यक्ति के हृदय में कैद हो जाते हैं, बंदी हो जाते हैं। भागवत सुना नहीं है, सुनने की इच्छा करने से भगवान हृदय में आ जाते हैं। जब सुन लिया जाए और सुनकर उसे जीवन में उतारा जाए तब तो क्या नहीं हो सकता है। भागवत की असीम और अपार महिमा है, क्योंकि भागवत में वेद व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण की विशुद्ध लीला का वर्णन किया है। भगवान चैतन्य महाप्रभु जो करुणा वरुणालय कलयुग पावन अवतार है, चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद से पूछते हैं कि हे रामानंद, इस संसार में सुनने लायक सबसे अच्छी चीज कौन सी है? श्रवण मध्ये कौन बड़ श्रवण, श्रवण करने में कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे उत्तम है? तब भगवान की ही कृपा से राय रामानंद उत्तर देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की विशुद्ध लीला सुनना यही जीव का सबसे बड़ा कल्याण है, यही सबसे बड़ा श्रवण का मार्ग है। क्योंकि इस संसार में जो रसज्ञ नहीं है भगवान की लीला की कथा वही सुन सकते हैं और वही समझ सकते हैं जिसके हृदय में रस और भाव है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जिसके हृदय में भाव और रस नहीं है वो तो कौवे की तरह, इसे गुजराती में कहने उकड़ो गोते, हम जेना हृदय में भाव ने रस नथी ई भगवान श्री कृष्ण ने लीला नहीं सांभळी सके। पण जे रसज्ञ छे, रस ने जानवा वाला छे, जो रस को जानते हैं वे भगवान की कथा को सुन सकते हैं और उसका अधिकार हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हमें कौवे की तरह नहीं, हमें हंस की तरह बनना चाहिए, जो मान सरोवर में विचरण करता रहे, केवल भगवान की लीलाओं का गान करता रहे। और भगवान की लीला सुनने से हमें भगवान में प्रीति प्रेम उत्पन्न होगा। हम जब मंगला आरती में मंदिर में जाते हैं, आरती करते हैं, तुलसी पूजा करते हैं, नरसिंह आरती करते हैं, शिष्टाष्टकम बोलते हैं, नाम अपराध बोलते हैं, और अंत में क्या कहते हैं, जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो वो है श्री कृष्ण प्रेम। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्री कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त होगा, कृष्ण प्रेम तब तक प्राप्त नहीं होगा जब कृष्ण के बारे में सुना ना जाए। भगवान में या यदि किसी भी व्यक्ति में प्रेम करना है तो उसके बारे में सुनना होगा। सुनने से प्रेम होता है। भागवत के दशम स्कंध में कथा है, रुक्मणी जी का विवाह था शिशुपाल के साथ, परंतु विवाह के अंतिम दिन में भगवान श्री कृष्ण को पत्र लिखा, कृष्ण आप कैसे भी करके मुझे यहां से लेकर जाओ, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। रुक्मणी जी ने लव लेटर, प्रेम पत्र, ये जो आज लोग प्रेम पत्र लिखते हैं ना, ये द्वापर युग से प्रथा शुरू हुई है। सबसे पहला प्रेम पत्र रुक्मणी ने कृष्ण को लिखा, हे कृष्ण मैं आपके चरण को वर चुकी हूँ, मैं आपको पति मान चुकी हूँ, कैसे भी करके आप मुझे यहाँ से लेकर जाओ, यदि आप नहीं लेकर जाओगे तो मैं किसी के साथ विवाह नहीं करूंगी। हे कृष्ण आपको प्रश्न होता होगा कि मैंने कभी आपको देखा नहीं है, फिर भी इतना मैं आपसे क्यों प्रेम करती हूँ। प्रश्न होता है, रुक्मणी ने कृष्ण को कभी भी नहीं देखा था, फिर भी लिख दिया कि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, कैसे। रुक्मणी लिखती है कि कृष्ण मैंने आपको देखा नहीं है, परंतु नारद असित इत्यादि बड़े बड़े ऋषि मुनियों से आपकी कथा सुनी है, और आपकी कथा सुनकर मुझे आप में प्रेम उत्पन्न हो गया है। ठीक उसी प्रकार यदि हमें भी भगवान की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्ति करनी हो, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना हो, तो भगवान कृष्ण की विशुद्ध कथा सुननी चाहिए। भगवान अनंत है और भगवान की कथा भी अनंत है। गोस्वामी जी कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान अनंत, भगवान की कथा अनंत, अनंत शेष अपने अनंत मुख से अनंत अनंत काल से भगवान की कथा कह रहे हैं, परंतु आज भी वह अनंत शेष भगवान की कथा को शेष नहीं कर पाए। तो भगवान की उस समुद्र रूपी अनंत कथा से आज हम एक बिंदु का स्पर्श करेंगे। भगवान इस संसार में आते हैं और आकर लीला करके हम सब जीवों का उद्धार करते हैं। भगवान ने बहुत बहुत लीला की है, उनमें से एक लीला का वर्णन आज हम सुनेंगे। देखिए इस संसार में हमारे बहुत सारे मित्र हैं। मित्र बनने में देरी नहीं लगती है। गुजराती में एक दोहा है, शेरी मित्र सो मड़े, ताली मित्र हजार। गलियों में घूमते घूमते सैकड़ों मित्र मिल जाते हैं। पान मावे के गले में खड़े रहकर कई लोग आपस में मित्र बन जाते हैं, परंतु सच्चा मित्र वो है जो सुख और दुख में साथ निभाए। इस संसार में मित्र तो बहुत है, मित्रता तो बहुत निभाते हैं, परंतु जो मित्रता कृष्ण निभाते हैं, ऐसे मित्रता इस संसार में कोई नहीं निभा सकता है। कृष्ण की मित्रता इतिहास के पन्ने पलट कर देख लीजिए, कृष्ण ने सुदामा के साथ जो मित्रता निभाई है, आज तक न तो भूत वर्तमान और भविष्य न तो कोई ऐसी मित्रता किया था और न तो कोई ऐसी मित्रता निभा सकता है, क्योंकि मित्रता निभाना भगवान श्री कृष्ण जानते हैं। भागवत कथा सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को सुना रहे थे। श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 80 अध्याय सुना दिए और 80वें अध्याय के प्रारंभ में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, कृपया करके आप मुझे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की कथा सुखदेव गोस्वामी भागवत में सुनाना प्रारंभ करते हैं। कृष्ण स्यासित सखा कश्चित ब्राह्मण ब्रह्म वित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण के एक सखा थे, कृष्ण स्यासित सखा कश्चित, और जन्म से ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ था, ब्राह्मण। और केवल ब्राह्मण नहीं थे, आजकल की तरह आजकल लोग अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं परंतु मुंह में पान और मावा होता है, ऐसे ब्राह्मण नहीं थे। सुखदेव गोस्वामी क्लियर कर रहे हैं, ब्राह्मण ब्रह्म वित्तम, ब्रह्म को जानने वाले, भगवान को जानने वाले ब्राह्मण थे। और वास्तव में ब्राह्मण उसे ही कहा जाता है जो भगवान को जाने। वेदों में कहा गया है कि जन्मना शूद्र जायते संस्कारात् द्विज उच्यते वेद पाठात् भवेत् विप्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जन्म से सब लोग शूद्र होते हैं, कलो शूद्र संभवा, परंतु जन्म के बाद जब उसका द्विजाति संस्कार होता है तब वो विप्र बनता है, द्विज बनता है, और जब वेद और शास्त्रों का अध्ययन करता है तब उसे विप्र कहा जाता है, और वेद और शास्त्र का अध्ययन करके जब वो भगवान की भक्ति करता है तब उसे ब्राह्मण कहते हैं। ऐसे ब्राह्मण थे और प्रशांत आत्मा। सुदामा का इंट्रोडक्शन पहचान देते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वे प्रशांत थे। शांत का अर्थ तो आप जानते हैं, शांत से भी बहुत गुना शांत है प्रशांत। इस संसार में हम देखते हैं कोई शांत नहीं है। कुछ लोग यहां भागते हैं कि मैं यहां कमा लूंगा, कुछ यहां कमाना चाहते हैं, कोई शेयर बाजार में कमाना चाहते हैं, कोई डायमंड में, तो कोई एम्ब्रॉयडरी में कमाना चाहते हैं, भटकते हैं, घूमते हैं और अशांत रहते हैं। और वास्तव में जो भोग भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, जो भुक्ति की इच्छा रखते हैं, मुक्ति की इच्छा रखते हैं, सिद्धि की इच्छा रखते हैं, ये सब लोग अशांत हैं। शांत इस संसार में केवल एक ही व्यक्ति हो सकता है, वो है कृष्ण का भक्त, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, कृष्ण की भक्ति करने वाला ही शांत, और सब अशांत रहते हैं। तो ऐसे प्रशांत आत्मा सुदामा जी थे और जितेंद्रिय अपनी इंद्रियों को वश में कर चुके थे। जितेंद्रिय का अर्थ होता है ये जो हमारी इंद्रिया है, आंख कान नाक मन बुद्धि, ये सब हमारे इशारे से काम करती है, परंतु इस संसार में जितेंद्रिय लोग नहीं है, इंद्रिय जीत सब लोग बनकर बैठे हैं, इंद्रियों के द्वारा जीते गए हैं। संसार के लोग समझते हैं कि कृष्ण की भक्ति करना ही सर्वश्रेष्ठ है, और यह भी समझते हैं महामंत्र जपना चाहिए, और यह भी समझते हैं कि रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान के नाम का जप करना चाहिए, इतना समझकर अलार्म भी रखते हैं। लेकिन सुबह जैसे 4:30 बजे अलार्म बजता है तो अलार्म की स्विच को बंद कर देते हैं। आज तो नई सिस्टम निकले, स्नूज सिस्टम, बंद करो तो 5 मिनट के बाद बजता है अलार्म, फिर 5 मिनट के बाद बजे तो फिर से बंद करते हैं, वैसे करके आधा एक दो घंटा निकाल देते हैं, और निकाल ही देंगे क्योंकि इतना आनंद आता है। जैसे जैसे सुबह होती है वैसे वैसे इतना सोने में आनंद आता है। यदि कोई सच्चा सोना भी दे दे तो व्यक्ति वह सच्चा सोना को ठुकरा देगा वह सोने के लिए। व्यक्ति में ज्ञान है, बुद्धि है, सब कुछ समझ रहा है, फिर भी अपनी इंद्रियों के द्वारा जीता गया है, इंद्रिया उसके वश में नहीं है। परंतु सुदामा जी के बारे में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं जितेंद्रिय, जितेंद्रिय। इस प्रकार से इंट्रोडक्शन देते हुए सुदामा का और एक मुख्य परिचय दे रहे हैं कि यह सुदामा भगवान श्री कृष्ण के सखा थे। कृष्ण स्यासित सखा कश्चित। सखा का अर्थ आचार्यगण कहते हैं खा का अर्थ होता है खाना और स का अर्थ होता है साथ साथ। जो साथ साथ बैठकर खाए भोजन करे उसे सखा कहते हैं। ऐसे एक सखा थे। कृष्ण और सुदामा की मित्रता कैसे हुई भागवत में नहीं है परंतु अन्य पुराणों में लिखा गया है। कथा से आप सब परिचित हो। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में। जन्म लेकर गोकुल में लेकर गए। गोकुल वृंदावन में 11.5 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण रहे और फिर मथुरा में आए। मथुरा में आकर सुदामा माली का उद्धार किया, धोबी का उद्धार किया, कुबजा का उद्धार किया, कुबलिया पीड़ हाथी महावत का वध किया, चारुण मुष्टि का वध करके कंस का वध किया और अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को कंस के कारागार से मुक्त किया। देवकी और वसुदेव ने देखा कि कृष्ण 11 साल का हो गया है लेकिन फिर भी क ख ग भी नहीं जानता है क्योंकि वृंदावन में तो केवल गाय चराने का ही काम था और पढ़ाई लिखाई तो की नहीं थी। तो आजकल के संसार के छोटे माता पिता भी अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। ये तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ भगवान श्री कृष्ण के माता पिता है, उनके मन में इच्छा नहीं हुई होगी कि मैं भी अच्छी स्कूल में पढ़ाऊं। तो एक दिन देवकी और वसुदेव ने सोचा कि आज तक हमारा बच्चा केवल गाय ही चराया है, यदि हमने इसको पढ़ाया लिखाया नहीं तो बड़ा होकर किसी लड़की को लेकर भाग जाएगा या अनपढ़ गवार अंगूठा छाप रहेगा, तो इसे पढ़ाना चाहिए। तो कृष्ण और बलराम को पढ़ने के लिए वसुदेव और देवकी ने बहुत सुंदर व्यवस्था की और सांदीपनि मुनि के आश्रम में कृष्ण और बलराम को पढ़ने के लिए भेजा गया। भगवान श्री कृष्ण सोने के रथ में सवार होकर सांदीपनि मुनि के आश्रम में जा रहे हैं। आज भी वह आश्रम उज्जैन में है, आप जाकर देख सकते हैं। सुदामा कुटीर अपना ये सांदीपनि जी का आश्रम। भगवान श्री कृष्ण सोने के रथ पर सवार होकर जा रहे हैं और उसी समय पोरबंदर में रहने वाले हमारे गुजरात के ही एक ब्राह्मण जिनका नाम सुदामा है, सुदामा भी उसी समय सांदीपनि मुनि के आश्रम में पढ़ने के लिए जाने के लिए निकले। सुदामा जी चलते चलते हुए जा रहे हैं। नंगा पांव है, कुछ चप्पल पहना नहीं है, नंगे पांव से चलते चलते जा रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण और बलदेव जी सोने के रथ पर सवार होकर जा रहे हैं। चलते 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 जब जंगल का रास्ता आया तो सुदामा जी के पांव में कई सारे कांटे लग गए और जब बहुत कांटे लग गए तो बेचारे चल नहीं सके। एक जगह पर बैठकर वह कांटों को निकालने लगे और भक्तों उसी समय भगवान श्री कृष्ण का रथ चलते 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 सुदामा के पास आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने दूर से ही देखा कि एक मित्र एक व्यक्ति परेशान हो रहा है कुछ। भगवान सुदामा के करीब गए और करीब जाकर कहा कि मित्र क्या कुछ परेशानी है, कुछ तकलीफ है? सुदामा जी ने कहा कुछ नहीं तकलीफ है, आप चलो मैं सब काम संभाल लूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा बताओ बताओ क्या तकलीफ है? सुदामा जी ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पांव में कांटा चुभ गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा लो इस संसार में यदि कोई मेरा नाम ले लेता है तो वह भव बंधन के कांटे से मुक्त हो सकता है और वही कृष्ण में जहां पर साक्षात खड़ा हूं तुम एक छोटे से कांटे से परेशान हो। लाओ मित्र मैं तुम्हारा यह कांटा निकाल देता हूं। शास्त्र में वर्णन है उस वक्त भगवान श्री कृष्ण अपने मुंह से सखा मित्र नाम निकाल दिए, सुदामा से मित्रता किए और सुदामा जी के पांव से भगवान श्री कृष्ण ने हाथ से कांटा नहीं निकाला भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से कांटा निकाला। भगवान अपने भक्त के भक्त हैं। यदि कोई कृष्ण की भक्ति करता है तो भगवान उसके वश में हो जाता है। एक जगह पर भगवान कहते हैं, जहां भक्त मम पद धरे, जहां मेरा भक्त पग रखता है वहां धरू में हाथ, वहां में मेरा हाथ रख देता हूं ताकि उसे रास्ते का कंकर पत्थर चोट न लगे। जहां भक्त मम पद धरे वहां धरू में हाथ, पीछे पीछे डोलू सदा में कभी ना छोड़ू साथ, उस भक्त का मैं कभी भी साथ नहीं छोड़ता हूं। भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। सुदामा के चरण से अपने दांत से काटा निकाला और कहा, मित्र कहां जा रहे हो? सुदामा जी ने कहा कि पढ़ाई करने के लिए सांदीपनि मुनि के आश्रम में जा रहा हूं। कृष्ण ने कहा, हम भी वहीं जा रहे हैं, चलो साथ साथ जाते हैं। सुदामा जी को रथ में बिठाया और कृष्ण, सुदामा और बलराम ये तीनों रथ पे सवार होकर सांदीपनि मुनि के आश्रम में पहुंच गए। सांदीपनि मुनि के आश्रम में पहुंचकर शिक्षा प्रारंभ हुई। वैसे तो भगवान को कोई शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि जाके वेद श्वास श्रुति चारी, जिसके सांस श्वास से वेद निकलते हैं, ऐसे भगवान को पढ़ने की आवश्यकता है। भगवान जब सांस छोड़ते हैं तो उसमें से वेदों की ध्वनि। अरे भगवान की बात छोड़ दीजिए, भगवान का एक वाहन है गरुड़ जी। गरुड़ जब उड़ते, गरुड़ जी जब उड़ते हैं तो गरुड़ जी की पंख से साम वेद की ध्वनि निकलती है। भगवान के वाहन से वेदों की ध्वनि निकलती है, उस भगवान को पढ़ने की आवश्यकता है। परंतु फिर भी भगवान एक मनुष्य लीला, नर लीला कर रहे हैं, इसलिए एक आदर्श दे रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता है। कृष्ण गए सांदीपनि मुनि के आश्रम में, पढ़ाई शुरू हुई और पढ़ते पढ़ते कुछ दिन बीते। एक दिन की बात, सांदीपनि मुनि ने गुरुकुल में सभी बालकों को कुछ संस्कृत के श्लोक याद करने के लिए कहा था। तो सांदीपनि मुनि ने एक एक करके सबको पूछा कि आप बोलो। ऐसे करते करते सुदामा जी का टर्न आया और सुदामा को कहा कि मैंने तुम्हें जो कल घर काम होमवर्क दिया था करके आए हो, श्लोक याद करके आए हो? सुदामा जी ने कहा कि गुरुजी वो तो मैं भूल गया। तब सांदीपनि मुनि ने कहा कि तो तुम्हें दंड मिलेगा, आज गुरुकुल में ईंधन के लिए लकड़ी एकत्रित करने के लिए तुम जंगल में जाओगे। इस प्रकार सुदामा को दंड दिया। अब भगवान अपने मित्र के बिना कैसे रह सके? सुदामा के बाद सांदीपनि मुनि ने कृष्ण को पूछा, कृष्ण मैंने तुम्हें कल जो श्लोक याद करने के लिए कहा था, तुम श्लोक याद करके लाए हो? कृष्ण ने कहा, गुरुजी वो तो मैं भूल गया। जो कृष्ण कुरुक्षेत्र की भूमि में अर्जुन के रथ के ऊपर खड़े खड़े कहते हैं, वेदा हम समति तानी वर्तमानानी च अर्जुन, भविष्यानी च भूतानी माम तु वेदन कृष्ण अर्जुन। इस संसार में अनंत अनंत करोड़ों करोड़ों जीव के भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में मैं सब कुछ जानता हूं। वह कृष्ण सांदीपनि मुनि को कहते, मैं एक श्लोक भूल गया। भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब इस प्रकार से कहा तो सांदीपनि मुनि ने कहा कि कृष्ण तुम भी सुदामा के साथ जंगल में लकड़ी तोड़ने के लिए जाओगे। कृष्ण तो यही चाहते थे, वे तो अंदर से खुश हो गए। कृष्ण और सुदामा दोनों जब लकड़ी तोड़ने के लिए जा रहे हैं, तब गुरु माता का हृदय बहुत कोमल, गुरु माता ने एक छोटी सी पोटली में कुछ चने बांध कर दिया कि हे कृष्ण, हे सुदामा, भूख लगने पर ये चना खा लेना। दोनों को एक एक पोटली दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सुदामा ऑलरेडी मेरे कंधे में बंसरी और सब में रखा हूँ, मोबाइल इत्यादि इंस्ट्रूमेंट है। मेरी जेब भरी हुई है, मेरा चना तुम ही रखो, और जब मुझे भूख लगेगी तो आपस में दोनों मिलकर खा लेंगे। सुदामा ने कहा, ठीक है, तुम्हारा चना मैं रखता हूं, जब चाहिए तब मांग लेना। कृष्ण और सुदामा दोनों निकले हैं और निकलते निकलते जंगल में प्रवेश किए और बहुत गहरे जंगल में चले गए। और एक गहरे जंगल में जाकर कृष्ण और सुदामा ने एक पेड़ देखा, जिस पेड़ पर कई सारी लकड़ियां सूखी हुई थी। सुदामा ने कहा, कृष्ण तुम नीचे खड़े रहो, क्योंकि तुम तो मथुरा में रहने वाले, तुम तो राजपाट में रहने वाले हो, तो तुम कहां पे पेड़ पर चढ़ना जानो, मैं वो पेड़ के ऊपर चढ़ता हूं और लकड़ी तोड़कर लाता हूं। कृष्ण ने कहा, तुम क्या जानो पेड़ पर चढ़ना, 11.5 वर्ष का अनुभव है, वृंदावन में यही किया है, पेड़ पर चढ़े हैं, किसी के कंधे पर चढ़े हैं, किसी की दीवार पर चढ़े हैं, यही तो धंधा था हमारा। मथुरा में तो 1-2 साल से रह रहा हूं, 11 साल वृंदावन का एक्सपीरियंस है। कृष्ण ने कहा, तुम नीचे खड़े रहो, मैं जाकर तोड़कर आता हूं। कृष्ण चढ़े उस पेड़ के ऊपर और पेड़ के ऊपर चढ़े, लकड़ी तोड़ रहे थे, उतने में बारिश हुई। और आप सब जानते हो, जब स्नान करते हैं नदी में, गंगा नदी में इत्यादि कहीं भी, तो भूख लगती है। नीचे सुदामा खड़े थे और उसे भूख लगी। भूख लगी तो सुदामा ने बिना पूछे अपना जो चने का भाग था वह भी खा गए, और कृष्ण का जो चने का भाग था वह भी खा गए। अब कृष्ण तो सब कुछ जानते थे, क्योंकि वेदांत संहिता ने सब जीवों के बारे में जानते हैं। कृष्ण ने मजाक करने के लिए पूछा, मित्र कुछ आवाज आ रही है, क्योंकि चने की आवाज खाने की आ रही थी, कड़ कड़ कड़। मित्र कुछ आवाज आ रही है। सुदामा ने कहा, कृष्ण ये जो बारिश गिर रही ना, इससे बहुत ठंडी लग रही है, और ठंडी के कारण दांत कांप रहे हैं, दांत की आवाज आ रही है। कृष्ण लकड़ी तोड़कर नीचे उतरे और नीचे उतर कर सुदामा को कहा कि मित्र वो जो चना मैंने तुम्हें दिया था वो लाओ, मुझे बहुत भूख लगी। सुदामा ने कहा कि कृष्ण वो तो मैं खा गया। बस कृष्ण ने कहा, अरे दरिद्र दरिद्र, मुझे भोग अर्पण के बिना खा गया। देखिए, एक बहुत बड़ा सिद्धांत प्रकट हो रहा है, जीवन में हमें जो भी वस्तु मिली है ये भगवान की कृपा से मिली है। इस संसार में जो भी वस्तु है भगवान से प्रकट हुई है, हमारी एक भी वस्तु नहीं है। जब हमारा जन्म हुआ तब एक चिचड़ा भी साथ में लेकर नहीं आए थे, ये सब भगवान की वस्तु है। और भोजन जो भी है सब भगवान का है, इसलिए सबसे पहले भगवान कृष्ण को अर्पण करना चाहिए और भगवान को भोग लगाकर उसे प्रसाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं करोगे तो देख लीजिए सुदामा जी की क्या हालत होने वाली है। सुदामा ने कृष्ण को भोग नहीं लगाया, बिना भोग लगा के ही खा गए। जो व्यक्ति भगवान को बिना भोग लगाए खाता है उसके जीवन में दरिद्रता निश्चित रूप से आएगी। इस शास्त्र का अकाट्य सिद्धांत है। कृष्ण और सुदामा दोनों वापस गुरुकुल में चले गए और 64 दिन में भगवान ने 64 कला सीख ली। 64 दिन में सारी शिक्षा समाप्त करके भगवान श्री कृष्ण मथुरा आए और सुदामा जी अपने गांव पोरबंदर में चले गए। और मथुरा से भगवान श्री कृष्ण द्वारका में गए और द्वारका के बहुत बड़े राजा बने। और सुदामा के बारे में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सुदामा बहुत गरीब जीवन बिता रहे थे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यत दृश्य योपपन्ने न वर्तमानो गृहाश्रमी। सुदामा पोरबंदर में जाकर गृहस्थ जीवन स्वीकार किए। उनकी पत्नी जिसका नाम सुशीला था और सुदामा के 3-4 बच्चे थे, पत्नी थी, बच्चे थे, परंतु दुख इस बात का था कि उसके घर पर पहनने के लिए कपड़े तो दूर की बात रही, खाने के लिए भोजन भी नहीं रहा था। 15-15 दिन से भोजन के बिना भूखे बच्चों को सुला रही थी उनकी पत्नी सुशीला। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सुदामा जी बिल्कुल दुर्बल देह, एक लकड़ी के समान पतला देह है, हड्डी दिख रही है, और उसी की प्रकार उनकी पत्नी है। बिना खाए पिए शरीर सूख गया है और बच्चे भी रोज दिन रात रो रहे हैं कि पिताजी माताजी मुझे भोजन दीजिए, खाने के लिए दीजिए। बहुत गरीब जीवन, बहुत दिनों से जब बच्चे भूखे थे तब माँ का हृदय नहीं रहा गया। एक दिन की बात, सुदामा की पत्नी सुशीला सुदामा जी के पास आई और सुदामा को आकर कहने लगी कि हे प्रिय, हे ब्राह्मण, मैं जानती हूं कि आपका कभी नहीं मांगने का व्रत है, आप मर जाओगे परंतु किसी भी व्यक्ति से कभी मांगोगे नहीं, ये मैं जानती हूं, परंतु बच्चों के सामने तो देखो, हम और आप भूखे रह जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, हम मर जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु बच्चे भूखे भूखे रो रहे हैं। देखिए, एक आदर्श नारी स्थापित कर रही है। इस संसार की यदि कोई महिला होती तो अपने पति को कहती कि इतने दिनों से क्यों घर पर बैठे हो, जाओ काम धंधा करो कुछ। परंतु एक नारी का स्वभाव कैसा होना चाहिए ये सुदामा की पत्नी बता रही है। वास्तव में चार चीज की परीक्षा तब होती है जब आफत का समय आए। धीरज धर्म मित्र अनुनारी, आफत काल परचियो चारी। नारी की परीक्षा तब होती है जब घर में कुछ दुखी स्थिति हो। अब घर में पर्याप्त धन हो, बहुत अच्छा और सुंदर घर हो, ऐसे समय में नारी की परीक्षा नहीं होती है। नारी की परीक्षा तब होती है जब घर में कुछ पैसे धन ना हो और पतिदेव 10-15 भक्तों को लेकर घर पे आ जाए, और ऐसी स्थिति में नारी का मुंह न बिगड़े, प्रसन्न होकर भक्तों के लिए बहुत सुंदर प्रसाद बनाए, तब माना जाएगा कि नहीं, नारी परीक्षा में पास हुई। लेकिन जैसे ही मेहमान घर पर आते हैं और यहाँ पर मुंह बिगड़ जाता है। वास्तव में भागवत के पंचम स्कंद में लिखा है, घर पे यदि कोई मेहमान आए और हृदय से प्रसन्नता न हो तो भी ऐसे व्यक्ति को नरक में स्थान मिलता है, वो नरक में जाएगा। खैर, नारी की परीक्षा तब होती है। तो सुदामा की पत्नी ने ऐसा नहीं कहा कि तुम कुछ कमाते नहीं हो, कुछ काम के नहीं हो, मैंने क्यों तुम्हारे साथ विवाह किया, ऐसा नहीं कहा। कहा कि मैं जानती हूं कि आप किसी से कभी भी नहीं मांगोगे, परंतु लड़कों के सामने तो देखो। वास्तव में कभी कभी प्रश्न होता है कि सुदामा भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, फिर भी उसके जीवन में इतना दुख क्यों आया? रहने के लिए घर नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, खाने के लिए भोजन भी नहीं। परंतु शास्त्र में कहा गया है कि जीवन में दुख आना यह भी एक भगवान की विशेष कृपा है। पद्म पुराण में कहा गया है, भगवान स्वयं युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, तस्या अहम अनुग्रहणामि, इस संसार में यदि कोई व्यक्ति मेरी भक्ति करता है तो भक्ति करने वाले पर मैं कृपा करता हूं। क्या, कैसी कृपा करता हूं? तस्या अहम अनुग्रहणामि, कुछ माइक शुरू हो गए, दूसरा माइक। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा कृष्णा। भगवान कहते हैं कि जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूं, तस्या अनुग्रहणा में, जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करता हूं, तो सबसे पहले उसकी उसके ऊपर क्या कृपा करता हूं, हरिष्ये तद धनम शने, उसका मैं सारा धन हर लेता हूं। ये भगवान की कृपा है। ऐसा ही होता है, जो व्यक्ति भक्ति करने लगता है तो उसका धंधा बंद हो जाता है। ये भगवान कहते हैं, जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूँ तो सबसे पहले मैं उससे धन ले लेता हूँ। हरिष्य तद धनम शने। और धन लेने के बाद दूसरी कृपा क्या करता हूँ? दूसरी कृपा यह करता हूँ कि मैं उसे समाज से अलग कर देता हूँ, समाज के साथ झगड़ा करवा देता हूँ, या समाज वालों से ही उसे अलग कर देता हूँ। ऐसा ही होता है, जो लोग भक्ति में आगे बढ़ने बढ़ते हैं तभी समाज वाले कहते हैं ये हरे कृष्ण ही करता है, ये कुछ काम का, ये कुछ काम का ही नहीं। जैसे नरसिंह मेहता को समाज से निकाल दिया, मीरा बाई को निकाल दिया, ये भगवान की दूसरी कृपा है। कुछ लोग कहेंगे ऐसी कृपा भगवान करते हैं तो फिर भक्ति ही नहीं करनी है। धन ले लेंगे, समाज से अलग कर देंगे। परंतु बाद में भगवान कहते हैं कि जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूँ उसका धन ले लेता हूँ और समाज से अलग कर देता हूँ, और धन लेने के बाद, समाज से अलग कर देने के बाद फिर भी वह मेरी भक्ति करता रहे, मेरी शरण न छोड़े, तो हे युधिष्ठिर मैं उसे ऐसा पद देता हूँ, ऐसा पद देता हूँ कि देवानाम अपि दुर्लभम, बड़े बड़े शिव जी, ब्रह्मा जी और इंद्र भी ऐसा पद, ऐसा स्थान प्राप्त नहीं कर सकते, वो स्थान गोलोक वृंदावन में दे देता हूँ। ताली तो बजा दी परंतु परीक्षा से पास भी होना है। ताली बजाने से कुछ नहीं होगा। जैसे ही हमारे जीवन में धन कम हो जाता है तो हम सोचते हैं भक्ति करने के बाद भी धंधा ठीक से नहीं हो रहा है, छोड़ो अब भक्ति, छोड़ो धंधे में ध्यान दो। ऐसा नहीं, भगवान परीक्षा लेते हैं। सुदामा के जीवन में भी परीक्षा और हमारे जीवन में भी परीक्षा आएगी। कुछ लोगों के जीवन में परीक्षा चल रही है, कुछ लोग इस परीक्षा से पास हो चुके हैं और कुछ लोग के जीवन में आएगी, और हमें इस परीक्षा में पास होना है। तो इस प्रकार से सुदामा के जीवन में बहुत कठिन स्थिति थी, बहुत दुख के दिन बिता रहे थे, बहुत दुख के दिन। बच्चे रात दिन रो रहे थे। एक दिन सुशीला सुदामा जी के पास आकर कहने लगी कि हे ब्राह्मण देव, मैंने सुना है लक्ष्मी के नाथ, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ भगवान श्री कृष्ण आपके मित्र है। सुखदेव गोस्वामी भागवत, मेरे पास समय नहीं है, बिल्कुल श्लोक का अनुवाद बहुत सुंदर सुखदेव गोस्वामी ये कथा कह रहे हैं। लक्ष्मी के नाथ आपके मित्र हैं और आप लक्ष्मी से दुखी हो रहे हैं। हे प्रिय, हे ब्राह्मण, मेरी इच्छा है कि आप कृष्ण के पास जाओ और उसे विनंती करो कि हमारा कुछ दुख दूर करे। सुदामा जी ने कहा कि बड़े लोगों के पास, मित्र के पास तब जाना चाहिए जब हम सुखी हो। हम दुख लेकर किसी मित्र के पास जाएंगे तो यह मित्रता नहीं है। सुशीला ने कहा कि कृष्ण के पास जाओ तो सही, भले उसके पास से कुछ मांगना नहीं, केवल उसके पास जाकर आओ, उसका दर्शन करने से भी सारी दरिद्रता मिट जाएगी। सुशीला ने बहुत बहुत समझाया। सुदामा जी ने मन में सोचा कि यदि मैं कृष्ण के पास जाऊंगा तो समाज क्या कहेगा, सोने की नगरी में रहने वाला कृष्ण एक भिखारी के साथ मित्रता किया था, समाज के लोग तो बातें करेंगे। परंतु सुदामा जी के मन में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि तुरंत विचार आया कि भगवान से मिलना है तो फिर समाज को तो ठुकराना होगा, क्योंकि समाज वाले तो कभी भी भगवान से मिलने के लिए सहायता नहीं करेंगे। क्योंकि समाज, एक संत बहुत सुंदर कहते हैं, ये समाज वाले कैसे हैं, यदि आप रास्ते से जा रहे हो, यदि आप अपनी आंख नीचे रखकर जा रहे हो तो ये समाज वाले कहेंगे लगता है इसने कुछ काला काम, कुछ गलत काम किया है, चोरी की है या कुछ गड़बड़ की। यह सुनकर यदि आप अपनी आंख ऊपर रखकर चलोगे तो वही समाज वाले कहेंगे देखो कितना अभिमान इसमें आ गया है, कितना अहंकार, कितना अभिमान, नीचे देखता ही नहीं है, ऊपर देखकर चलता है। यह समाज की यह बात सुनकर यदि अपनी आंख सीधी रखकर चलो तो फिर वही समाज के लोग कहेंगे देखो कितना खराब व्यक्ति है, संसार के सभी माताओं को सभी स्त्रियों को कैसे देख रहा है। उसी समाज की सारी बात सुनकर यदि आप अपनी आंख फोड़ दोगे तो वही समाज कहेगा कि करेला कर्म ना फल भोग वैसे। ये समाज है, समाज का कोई ठिकाना नहीं। सुदामा जी ने सोचा कि कृष्ण दर्शन लालसा, केवल कृष्ण का दर्शन करने से जीवन की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। मैं मेरी पत्नी के कहने पर कृष्ण का दर्शन करने के लिए जाऊंगा। परंतु देवी, यदि हमसे छोटे व्यक्ति के घर पर जाते हैं, कृष्ण उम्र में छोटे थे, तो कुछ लेकर जाना होता है, खाली हाथ हम कभी नहीं जा सकते। क्या घर पे कुछ पड़ा है कृष्ण को देने के लिए? सुशीला ने कहा, यदि होता तो मैं आपके पास क्यों आती, बच्चों को खिला नहीं देती। सुदामा जी ने कहा, खाली हाथ में नहीं जाऊंगा। देखिए, हम जब भगवान के मंदिर में जाते हैं तो कुछ लेकर जाना चाहिए। सुदामा सिखा रहे हैं, कुछ नहीं था घर पर, लेकिन फिर भी पड़ोसी से मांग कर लेकर गए। हमारे पास तो भगवान ने बहुत कुछ दिया है। सुदामा जी ने कहा कि तो एक काम करो, बाजू में से कुछ मांग कर लेकर आओ, बिना खाली हाथ से मैं नहीं जाऊंगा। सुशीला पड़ोस में गई, पड़ोस में जाकर कहा कि कुछ सीधा कुछ आटा या कुछ चावल दे दो। पड़ोसी वाले ने कहा कि इतने दिनों से तो मैं आपको दे रही हूं, कितनी बार मैं आपको दूं? सुशीला ने कहा कि एक बार, अंतिम बार हमें थोड़ा सा अन्न दे दो, मैं आपको वापस लौटा दूंगी, क्योंकि अब की बार मेरे पति देव कृष्ण को मिलने जा रहे हैं। तब पड़ोसी में से कुछ चावल, या कुछ लोग पौवा कहते हैं, चिवड़ा चूड़ा, लेकिन चावल ही रखे क्योंकि सुखदेव गोस्वामी चावल कह रहे हैं, चावल दिया और चावल की एक पोटली बनाई। सुशीला ने सुदामा के हाथ में पकड़ा दी। सुदामा जी इतने दुर्बल देह था, इतने सूखे हुए थे, अपने दो पांव पर नहीं चल सकते थे, हाथ में लकड़ी रखनी पड़ती थी। लकड़ी के ऊपर वह चावल की पोटली बांधी और सुदामा जी कृष्ण को मिलने के लिए द्वारका के पंथ पर चलने लगे। चलते 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 सुदामा जी निकले हैं। मन में यह भाव है, कृष्ण का दर्शन करूंगा। सुदामा जी एक दिन, दो दिन, तीन दिन हुआ, लेकिन फिर भी द्वारका का कोई नामो निशान नहीं मिला। आचार्य गण अपनी टीकाओं में कहते हैं कि सुदामा जी एक पेड़ के नीचे थक कर बैठ गए और रास्ते से जो मुसाफिर जा रहे थे उनमें से किसी को बुलाया, कहा भाई साहब यहां पर आओ। कहा यहां से द्वारका कितनी दूर है? वो भाई साहब ने कहा कि द्वारका किसको जाना है, जाना किसको है द्वारका? सुदामा जी ने कहा मुझे द्वारका जाना है। वो व्यक्ति ने कहा आपको द्वारका जाना है, आप इस शरीर से द्वारका नहीं जा सकते हो, क्योंकि ये शरीर अब द्वारका नहीं पहुंच पाएगा, द्वारका यहां से बहुत दूर है। सुदामा जी इतना सुनते ही बेहोश होकर गिर गए कि द्वारका अभी भी इतनी दूर है, कैसे मैं पहुंचूंगा? क्योंकि 15 दिन से कुछ नहीं खाया और लगातार 3 दिन चलना, ये केवल हम बोल सकते हैं, ये करके जब देखेंगे तब पता चलेगा। और वह दिन दूर नहीं है, अगले शनिवार को ही भीम एकादशी है और सबको निर्जला बिना पानी पिए रहना है। शाम को देख लेना कैसी हालत होती है और अनुभव कर लेना सुदामा के जीवन में कैसा दिन आया होगा। लेकिन फिर भी कृष्ण ने शक्ति प्रदान की, सुदामा जी खड़े हुए। खड़े होकर चलते 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 वे द्वारका की बॉर्डर में पहुंच गए। द्वारका का ऐश्वर्य सुदामा जी ने दर्शन किया, ऐश्वर्य देखा। ऐश्वर्य देखकर चलते चलते सुदामा जी द्वारका में भगवान श्री कृष्ण जिस द्वारका जिस महल में रहते थे, भगवान कृष्ण के महल के मेन दरवाजे के ऊपर सुदामा पहुंच गए। और भगवान के दरवाजे पर, अब आप देखिए इस संसार में एक छोटे से बंगले में कोई रहता है, वो भी दो तीन वॉचमैन गुरखा रखता है, ये तो भगवान की सोने की नगरी थी, तो कितने द्वारपाल होंगे? 10-15 द्वारपाल वहां पर खड़े थे। और सुदामा जी जैसे ही भगवान कृष्ण की द्वारका में प्रवेश करने की इच्छा किए, तुरंत 10 द्वारपाल आकर दीवार बनकर खड़े रह गए। कहां जा रहे हो भाई? सुदामा जी ने कहा कि कृष्ण से मिलना है। कृष्ण से मिलना है? क्यों कृष्ण से मिलना है? सुदामा ने कहा कि कृष्ण से इसलिए मिलना है क्योंकि वो मेरे मित्र है। एक द्वारपाल ने सुदामा को धक्का देकर कहा, अरे स्वर्ग का राजा इंद्र यहां पर आने के लिए वह शर्माता है कि मैं भगवान की द्वारका में मैं भिखारी की औकात भी मेरी नहीं है। स्वर्ग का राजा इंद्र यहां पर आने के लिए शर्म करता है और तुम अपने आप को कृष्ण का मित्र मानते हो? सुदामा जी ने कहा कि नहीं, मैं कृष्ण का मित्र हूं। दूसरे द्वारपाल ने कहा, जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं, बहुत ऐसे भिखारी आते हैं और आकर 10-15 रुपए लेकर चले जाते हैं। सुदामा जी ने कहा कि नहीं, हम दोनों साथ में पढ़ते थे और वो मेरा खास मित्र है। एक व्यक्ति ने कहा कि यदि अब तुम वापस नहीं गए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, मर जाओ। इतना कहकर उस व्यक्ति ने धक्का दिया। सुदामा जी ने कहा कि यदि मर जाऊं तो मरना निश्चित है, मरू तो हरिद्वार पर मरू। और उस गिरे हुए सुदामा ने कहा कि कब हूं तो बुझई है, कभी तो कृष्ण इस द्वार की द्वारका की नगरी से बाहर निकलेंगे और बाहर निकलकर जब देखेंगे कि यह सूखा हुआ देह, यह कौन मरा हुआ पड़ा है, तब उस कृष्ण को कहना कि तुम्हारा एक मित्र सुदामा आया था। कृष्ण जब यह सुनेंगे तो वह आंसू निकाल निकाल कर रोएंगे। जैसे समुद्र में मीठी बिरड़ी होती है, वैसे उस कई सारे द्वारपालों में एक अच्छा द्वारपाल था और उसे सुदामा के ऊपर दया आ गई। और दया आकर कहा, सोचा कि हो सकता है कृष्ण तो अनंत लोगों के स्वामी है, कभी कभार बना लिया होगा कृष्ण ने मित्र, भगवान कृष्ण को कहने में क्या हर्ज है, चलो कृष्ण को जाकर बता दूं। तो वह द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण के पास गया और उस वक्त कृष्ण, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सोने के महल में बैठे थे, सोने की सैया के ऊपर लेटे हुए थे। रुक्मणी और सत्यभामा चामर डुला रही थी, अन्य रानियां भगवान श्री कृष्ण को पानी परोस रही थी। उसी वक्त वह द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में उपस्थित हुआ और कहा कि प्रभु, द्वारका की द्वार पर एक व्यक्ति आया है और वह अपने आप को सखा आपका मित्र बता रहा है। तो भगवान ने कहा कि वह कैसा है? तब उस द्वारपाल ने कहा कि शीश पगान जगातन पे, कहां से आई बसे के ही गामा। शीश पगा, पांव नंगा पांव है, पांव में कुछ पहना नहीं है और सिर बिल्कुल खुला है, दुर्बल देह है। धोती फटी सी लटी दुपटी और उपाई उपान की नहीं सामा। फटी हुई धोती पहनी हुई है, हाथ में लकड़ी है और अपने पांव के बल पर बेचारा खड़ा भी नहीं रह सकता है, कांप रहा है। द्वार खड़ो दिज दुर्बल देखी, रहो अभी अभी ताक रहे तही दामा। द्वार के द्वार पर खड़े खड़े वे आपकी राह देख रहा है। भगवान ने कहा, तो क्या तुमने उसका नाम पूछा? तब द्वारपाल ने कहा कि हां, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जब उस द्वारपाल के मुख से सुदामा शब्द निकला, भगवान श्री कृष्ण उस सोने के सैया पर लेटे हुए थे, भगवान छलांग लगाकर खड़े हो गए। रानियां पानी परोस रही थी, थाली को उड़ा दिए। सत्यभामा रुक्मणी चामर डुलाती रह गई। भगवान द्वारका की रास्ते पर दौड़ते दौड़ते सुदामा को मिलने के लिए गए। भगवान दौड़ रहे हैं, द्वारपाल के लोग सोच रहे हैं कि आज तक कृष्ण तेज गति से चले भी नहीं है, आज कृष्ण इतना दौड़ क्यों रहे हैं। ऐसा क्या हो गया है कि कृष्ण इतना दौड़ रहे हैं, सारी द्वारका एकत्रित हो गई कृष्ण को देखने के लिए, कि ऐसा आज क्या हुआ है, क्या हुआ है? अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण दौड़ रहे हैं। जब कृष्ण को दौड़ते हुए देखा, कृष्ण ने दूर से सुदामा का दर्शन किया, देखा कि सुदामा है, दूर से सुदामा चिल्लाकर कृष्ण सुदामा के जाकर सुदामा को अपने बाहों में भर लिया। सुदामा को अपने बाहों में भरकर भगवान श्री कृष्ण अपनी आंखों से अजस अविरत अश्रु धारा। मित्र, ये हाल हो गया। भगवान श्री कृष्ण सुदामा को गले मिलते हुए यह कह रहे हैं, एक बार तो इशारा कर दिया होता तो मैं लाखों लाख रुपए भेज देता, एक बार इशारा भी नहीं किया। सुदामा ने इतना ही कहा, प्रभु मैंने नहीं कहा तो क्या आप भी नहीं जानते थे मेरी स्थिति को? आप तो सर्वज्ञ हो, अंतर्यामी हो, क्या आपको नहीं पता था मेरी ऐसी स्थिति है? नहीं मित्र, नहीं मित्र, एक बार तो मुझे कहा होता कि ऐसी स्थिति हो गई। भगवान श्री कृष्ण यह कहते कहते रोने लगे, वाह गदगदा वाणी गदगद हो गई, बहुत करुण दृश्य, श्वास पूरी द्वारका यह दृश्य को निहार रही। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने जैसे चाशनी में शक्कर मिल जाती है, वैसे कृष्ण ने सुदामा को इतना अखबार में भर लिया, और आधे घंटे तक भगवान श्री कृष्ण सुदामा को छोड़े नहीं। और भगवान ने सोचा कि यदि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं तो बेचारा इतना दुर्बल देह है, बेचारा मर जाएगा मेरी बाहों में ही, भगवान ने छोड़ दिया। और उस वक्त सुदामा ने सोचा कि मेरे हड्डी इतनी कठोर है, कृष्ण को लग रही होगी, दोनों एक दूसरे को छोड़ दिए। परंतु भगवान श्री कृष्ण रह नहीं सकते थे, सुदामा को अपने हाथ में लेकर जैसे चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को लेकर उस जगन्नाथपुरी में घूमे थे, वैसे भगवान श्री कृष्ण सुदामा को अपनी गोद में उठाकर अपने राजमहल में लाए। और सारे द्वारका के लोग कहने लगे, धन्य है भगवान की भक्ति को धन्य है। अरे भक्त क्या भगवान की भक्ति करते हैं, भक्त से करोड़ों गुना तो भगवान अपने भक्त की भक्ति करते हैं। भगवान श्री कृष्ण सुदामा को अपनी गोद में उठाकर अपने घर पर लेकर आए, आकर सुदामा को अपने सोने के सिंहासन के ऊपर बिठाया। सोने के सिंहासन के ऊपर बिठाकर सबसे पहले अतिथि सत्कार, सुदामा का चरण धोने के लिए सत्यभामा और रुक्मणी को आदेश दिया। रुक्मणी पानी का पात्र लेकर आई है, और रुक्मणी को देखकर 16108 रानी पानी का पात्र लेकर आई सुदामा जी का चरण धोने के लिए। परंतु एक कवि बहुत सुंदर कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण सुदामा का चरण धोना प्रारंभ किए, सुदामा जी के चरण को स्पर्श किए, तो देखा कि सुदामा जी के चरण में असंख्य कांटे लगे हुए हैं, असंख्य छोटे छोटे विवाही लगी हुई है। ऐसे बिहावन विवाई ने सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोये, हाय महापुरुष पायो सखा तुम आये इते न किते दिन खोए। हे सुदामा, हे मित्र, ऐसा हाल बना लिया, इतने दिन तुम कहां थे? सुदामा जी के चरण में इतने कांटे लगे थे, भगवान श्री कृष्ण के हृदय में कितना दुख हुआ। कहते हैं, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, हे कृष्ण करुणा सिंधु, भगवान कृष्ण जो करुणा के सागर है, वे करुणा का सागर आज सुदामा की स्थिति को देखकर रोने लगा। भगवान श्री कृष्ण इतना रोए सुदामा की स्थिति को देखकर कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैन केस जल सो पग धोए। सत्यभामा 16108 रानियां हाथ में पानी का घड़ा लेकर खड़ी रह गई, पानी की जरूरत नहीं पड़ी, भगवान कृष्ण ने अपने आंख के आंसू से ही सुदामा के चरण को धो दिया। भगवान भी भगवान भक्त की भक्ति को देख राज रोए, भगवान भी रोने लगे। फिर भी चरण धोने के बाद सुदामा जी को कहा कि कई दिनों से आप यात्रा में हो, इसलिए आप स्नान कर लीजिए। सुदामा जी को जब स्नान करने के लिए गए, भगवान ने स्नान करवाया। भगवान के बाद रुक्मणी जी ने कहा कि मुझे भी स्नान करवाना है। जब रुक्मणी ने कहा मुझे स्नान कराना है, तो माताओं में थोड़ी आपस में होड़ होती है, एक स्त्री करेगी तो दूसरी भी वही करना चाहती। सत्यभामा ने कहा कि मैं भी सुदामा को स्नान करवाऊंगी। 16,108 रानियां एक एक बाल्टी भरकर लेकर आई। सुदामा ने कृष्ण को कहा कि मित्र, ये क्या सब लोग बाल्टी लेकर आए हैं, लगता है आज किसी का राज्याभिषेक है। कृष्ण ने कहा नहीं नहीं, ये सब लोग तुम्हें स्नान कराने के लिए आ रही है। सुदामा ने कहा कि ये 16,108 बाल्टी से मुझे स्नान करवाओगे, न्यूमोनिया हो जाएगा, अभी का अभी मर जाऊंगा। आप एक काम करो, ये सभी बाल्टियों में से एक एक चरणामृत का थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद लेकर एक बाल्टी में डालो और उसे स्नान कर लेता हूं। इस प्रकार से सुदामा को स्नान करवाया और नए वस्त्र दिए पहनने के लिए, और बाद में सुदामा को भोजन करवाया, और भोजन करने के बाद भगवान ने सुदामा को प्रणाम किया और आशीर्वाद दिया, और भगवान ने सभी पत्नियों को कहा कि अब सब लोग प्रणाम करो। सुदामा जी को बिठा दिया आसन के ऊपर। सत्यभामा आई, दंडवत प्रणाम की, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया मुंह से, सौभाग्यवती भव। दूसरी आई, दूसरी को आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्य। अब 16,108 सुदामा जी तो बोल बोल कर थक गए। जब बोलकर थक गए तो कहा गया सुदामा जी दोनों हाथ केवल ऊपर कर सके, लेकिन 16,108 है, हाथ ऊपर कर करके भी थक गए, तब सुदामा जी केवल मुंह हिलाने लगे। जब मुंह हिलाकर भी थक गए, तब सुदामा ने कहा कृष्ण, मुंह दिख रहा, दुख रहा है, हाथ दुख रहा है और सिर भी दुख रहा है, एक काम करो, सभी पत्नियों को बोलो कि एक साथ वांछा कल्प तरु कर दे, सबका एक साथ आशीर्वाद हो जाए। सब लोग ने प्रणाम किया। प्रणाम करके, वैसे तो कृष्ण सभी रानियों के साथ शाम को शयन करते हैं, परंतु सुदामा जी आए हैं, इसलिए कृष्ण यह रात सुदामा जी के साथ बिताए। बहुत देर रात तक कृष्ण और सुदामा बैठे हैं। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को पूछा कि मित्र, मित्र विवाह कर लिया और मुझे बुलाया भी नहीं, कम से कम पेड़ा भेज दिया होता तो भी याद करता कि सुदामा ने विवाह कर लिया है। सुदामा ने कहा कि मैंने तो एक किया, तुमने तो 16,108 किया। छोटे से दास को बुला लिया होता तो आकर लाडवा खमन खाकर चला जाता। ब्राह्मण तो इसी के ही भूखे हैं। ब्राह्मण को कितना भी धन दो, जब तक भोजन न करवाओ तब तक संतुष्ट नहीं होते। दोनों मित्र आपस में बात किए, अपनी भूतकाल की बात को याद किए। कृष्ण ने कहा, याद है मित्र, हम दोनों सांदीपनि मुनि के आश्रम में पढ़ते थे। सुदामा ने कहा सब कुछ याद है, सब कुछ। पूरी रात बीती और रात को भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुदाम मित्र, तू मेरे लिए क्या लाए हो, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। सुदामा जी तो बहुत शर्मा रहे थे। सुदामा जी घर से निकले थे, वो चावल लेकर आए थे, परंतु भगवान के ऐश्वर्य को देखकर, सोने की द्वारका और इतनी सुंदर सुंदर रानी और सभी रानियों ने सुंदर सुंदर गहने और सब ऐश्वर्य देखकर सुदामा जी को लगा कि ये गिफ्ट निकालने जैसी नहीं है, निकालूंगा तो खाली फोकट, मेरा भी कचड़ा हो जाएगा और ये सब पत्नियां सोचेगी कि कृष्ण ने कैसा मित्र किया, इतना पांच चावल लेकर आया। सुदामा जी शर्मा रहे थे। भगवान तो भगवान की इच्छा हो गई। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान की इच्छा हो गई कि सुदामा जी की सारी दरिद्रता को मैं निकाल दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मित्र मेरे लिए कुछ नहीं लाए हो, मित्र पता है हम दोनों सांदीपनि मुनि के आश्रम में गए पढ़ते थे, हाँ पता है गुरु जी ने हमें जंगल में भेजा था, याद है। सुदामा ने कहा हाँ याद है, गुरु माँ ने हमें चना दिया था, हाँ याद है, याद है, मैंने मेरे चने का भाग तुम्हें दिया था और मैं पेड़ के ऊपर बैठा था। सुदामा ने कहा बिल्कुल याद है। याद है जब मैं नीचे उतरा तो तुमने कहा कि वह चने मैं खा गया हूं। अरे दरिद्र, जो चने तुम खा गए हो अब तो बाहर निकालो। ऐसे करके कृष्ण ने मजाक मजाक में सुदामा की जो बगल में पोटली थी वो पोटली निकाल दी और निकालकर खोलकर भगवान श्री कृष्ण उसे खाने लगे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब सुदामा की पोटली से निकाले हुए पौवे खा रहे हैं तो भगवान को अपने गोकुल की याद आ गई। कृष्ण के आंखों से आंसू निकलने लगे और कृष्ण इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, आज तक इतना प्रसन्न नहीं हुए। कृष्ण ने एक कवर खाया, दूसरा कवर खाया, जब तीसरा कोलिया खाने गए रुक्मणी जी ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। प्रभु, इस चीज में तुम्हें क्या आनंद आ रहा है कि अकेले अकेले खाए जा रहे हो? कृष्ण ने इतना ही कहा, देवी सुदामा जी के इस चेवड़े में, सुदामा जी के इस पोवे में मुझे यशोदा मैया के हाथ से बनाई हुई रोटी और मक्खन याद आ गया। मुझे आज मेरे गोकुल की याद आ गई। ऐसा यह करके सत्यभामा ने और 16108 रानियों ने सब सुदामा जी के लाए हुए पोवे को खा लिया। कहा जाता है कि जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर सुदामा के पोवे को खाया वैसे वैसे वहां सुदामा के घर पर सारी स्थिति बदल गई। यहां पर सुदामा जी कुछ दिन तक रहे और सुदामा जी ने कृष्ण को कहा कि कृष्ण अब मैं जाना चाहता हूं। कृष्ण ने कहा, ठीक है मित्र, तुम जाना चाहते हो, हम आपको रोक नहीं सकते हैं। सुदामा जी जाने के लिए तैयार हुए। कृष्ण ने कहा, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं चौराहे तक। कृष्ण, उद्धव जी और रुक्मणी जी यह तीनों सुदामा को छोड़ने के लिए गांव के नगर में गए। सुदामा जी चल रहे हैं, कृष्ण भी उनके साथ साथ चल रहे हैं। कृष्ण सुदामा से अलग होना नहीं चाहते हैं, उनके साथ ही साथ चल रहे हैं। अंत में सुदामा ने कहा कि कृष्ण अब तुम रुक जाओ, अब तुम एक कदम भी चले तो तुम्हें मेरी कसम। कृष्ण उसी जगह पर खड़े रह गए और सुदामा जी चलते चलते नंगे पांव चलते चलते जा रहे हैं। और जैसे जैसे सुदामा जा रहे हैं कृष्ण सुदामा जी को एक टक से देख रहे हैं और कृष्ण की आंखों से आंसू आ रहे हैं। रुक्मणी ने पूछा, प्रभु आज आपके आंख में इतने आंसू क्यों आ रहे हैं? रुक्मणी ने कहा कि मुझे पता है कि आपने सुदामा की सारी स्थिति बदल दी है। वहां पर आपने द्वारका जैसा ऐश्वर्य सुदामा को दे दिया है, परंतु कम से कम सुदामा को एक बार कह तो देना था कि आप घर पर जाओगे तो वहां पर बहुत धन और बहुत गाड़ी बंगला होगा। एक बार कह दिया होता तो सुदामा जी को रास्ते में कुछ तकलीफ न होती, वे प्रसन्न होकर जाते। भगवान श्री कृष्ण ने उस वक्त रुक्मणी को इतना ही कहा कि देवी मांगने वाला जब मांग नहीं सकता है तो देने वाला कैसे कह सकता है कि मैंने कुछ दिया है। धन्य है सुदामा। कृष्ण ने कहा कि देवी यदि मैं चाहता तो मेरे सोने के रथ के ऊपर सवार करके सुदामा को पोरबंदर पहुंचा देता, मेरी समर्थता थी, परंतु मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं चाहता हूं कि सुदामा का चरण हमारी इस द्वारका की भूमि पर पड़े। क्योंकि हे देवी, यह ब्राह्मण इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि यह परम पवित्र द्वारका को भी पवित्र करने वाला, तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानी, यह द्वारका को पवित्र करने वाला ब्राह्मण है, पवित्र ब्राह्मण है, इसलिए मैंने मेरा रथ नहीं भेजा। इस प्रकार से कृष्ण ने सुदामा को विदाई दी। सुदामा चले हैं। सुदामा जी रास्ते में सोचते सोचते जा रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी बहुत इसका सुंदर वर्णन करते हैं। सुदामा जी सोच रहे हैं कि देव कृष्ण कितने कृपालु हैं। कृष्ण ने कुछ दिया नहीं था सुदामा को। यदि हमारी तरह कोई होता तो कहता था इसने कुछ नहीं दिया, हम गए थे इतने बड़े व्यक्ति के घर पर और 10 रुपया भी डोनेशन में नहीं दिया। भक्त का गुण देखिए। सुदामा जी, सुखदेव गोस्वामी कहते मन में सोचा, कृष्ण कितने उदार हैं, कितने कृपालु हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ, पर ब्रह्म ऐश्वर्यवान द्वारका के नाथ मुझे गले लगाए और उसकी करुणा का तो कोई पारावार नहीं है। सुदामा जी मन में सोच रहे हैं कि यदि कृष्ण चाहते तो मुझे मालामाल कर सकते थे, परंतु कृष्ण की करुणा तो देखिए। मेरे मित्र कृष्ण ने सोचा कि यदि इसके पास धन आ जाएगा तो अभिमान हो जाएगा, और अभिमान जिसको आ जाता है वो भक्ति नहीं कर सकता है। मेरा अभिमान बढ़े नहीं, इसलिए उस प्रभु ने मुझे धन नहीं दिया। देखिए भक्त की सोचने की यह रीत है, इसलिए उसने मुझे धन नहीं दिया। इस प्रकार सुदामा जी सोचते सोचते जा रहे हैं। सुदामा जी जब अपने पोरबंदर अपने गांव में पहुंचे तो गांव में देखा कि जैसे द्वारका की गलियों को देखकर आए थे वैसे ही पोरबंदर में सब गलियां थी। सुदामा ने सोचा कि मैं घूमते घूमते द्वारका तो नहीं पहुंच गया फिर से, लेकिन फिर भी सुदामा आगे बढ़े तो देखा अपनी झोपड़ी को ढूंढ रहे थे। सुदामा ने देखा यहां मेरी झोपड़ी थी अब तो है ही नहीं। सुदामा जी ने सोचा कि बड़े बड़े बिल्डर झोपड़पट्टी को तोड़कर बड़े बड़े बिल्डिंग बना देते हैं, कोई बिल्डर आया होगा झोपड़ी तोड़कर यह महल खड़ा कर दिया है। महल के करीब गए तो वहां पर बहुत सुंदर उद्यान देखा, देवताओं के स्वर्ग में भी जो उद्यान जो बगीचे नहीं होते हैं वो वहां पर देखा। बहुत सुंदर कुंड, बहुत सुंदर सरोवर देखा, और सोने का महल जैसे द्वारका में देखकर आए थे वैसे ही सोने का महल देखा। और उस सोने के महल में सुदामा की पत्नी को सुशीला को पता चला कि सुदामा आए हैं। अरे पत्नी तो पत्नी का रूप बिल्कुल बदल गया था, सुंदर नव यौवनम च हो गई थी, और बहुत सुंदर अलंकार श्रृंगार, बहुत सुंदर साड़ी और कई सारी दासियों को लेकर हाथ में आरती की थाली लेकर सुदामा की पत्नी बाहर आई। सुदामा को लगा कि ये स्वर्ग से कोई अप्सरा तो नहीं आ गई, लेकिन करीब आई तो पता चला कि आ तो बाबलानी बा। तब पता चला तो ये तो सुदामा जी मन में समझ गए कृष्ण की कृपा हो गई है यहाँ पर। सुदामा की पत्नी बहुत प्रसन्न, उनको आरती की, और सुदामा की पत्नी ने कहा हमारे बच्चे देखो कितना खुश है। सुदामा ने कहा कि कृष्ण की कृपा है। सुदामा जी उस घर के ऐश्वर्य को देखे, परंतु आचार्य गण कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा को द्वारका नगरी तो मिल गई, परंतु सुदामा जी उस द्वारका जैसे ऐश्वर्य में नहीं रहते थे। सुदामा की पत्नी और बच्चे उस महल में रहते थे, परंतु सुदामा तो उस पोरबंदर के बाहर एक झोपड़ी बनाकर उसमें अपना भजन करते थे। भगवान के भक्त को कोई कामना नहीं होती है, न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश कामये, भगवान के भक्त की कोई कामना नहीं होती। जैसे वृत्तासुर कहते हैं न नाक पृष्ठम न चपार महिष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्ये न योग सिद्धि पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहिय कांक्षे, न तो मुझे इस देश का राजा बनना है, न तो यह पृथ्वी का राजा बनना है, न तो ब्रह्म लोक का राजा बनना है। प्रभु यदि आपको मुझे कुछ देना है तो जन्म जन्मांतर तक आपकी भक्ति करता रहूं, यही मुझे दीजिए। तो इस प्रकार से भगवान के भक्त की प्रार्थना, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मित्रता निभाई। भक्तों कथा का सार यही है, संसार में हम बहुत मित्र बनाते हैं। शेरी मित्र सो मले ताली मित्र हजार, जेमा सखतक वारिये सो लाखन में एक। मित्र तो बहुत है, परंतु मित्रता निभाना केवल कृष्ण जानते हैं। मित्र भी यदि किसी को बनाना हो तो कृष्ण को बनाइए, कृष्ण मित्रता निभाना जानते हैं। तो इस प्रकार कृष्ण को मित्र बनाइए, कृष्ण के साथ संबंध जोड़िए, और कृष्ण का नाम लीजिए, कृष्ण की कथा सुनिए, और अपने जीवन का उद्धार कीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।